जैसे ही अभिमन्यु ने बात कही तो उसने कहा, ओके ध्रुव, आप परेशान मत होइए, हम इप्सिता से बात करते हैं। जैसे ही ध्रुव ने बात सुनी वो खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर अभिमन्यु, आई एम 100% श्योर अगर आप उसे बोलेंगे तो वो मॉडलिंग से इस तरह दूर नहीं भागेगी। अभिमन्यु ध्रुव की बात सुनकर और कुछ नहीं बोला, उसने कहा, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिमन्यु ने कहा, इप्सिता ऐसा क्यों कर रही है? हमने उनसे कहा था कि हम उनके सपने में उनका पूरा साथ देंगे, उसके बावजूद भी वो ध्रुव को इस तरह मॉडलिंग करने से क्यों मना कर रही है? कहीं मासा की वजह से तो नहीं? अभिमन्यु के दिमाग में ख्याल आया। उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमें अभी इसी वक्त इप्सिता से बात करनी होगी, वो ऐसे कैसे कर सकती है? हमारी वजह से वो अपने सपनों को इस तरह दांव पर नहीं लगा सकती। इतना बोलकर अभिमन्यु सीधे कमरे में आया। इप्सिता फोन पर किसी से बात कर रही थी। अभिमन्यु उसे बात करते देखकर रुक गया। उसने इप्सिता की तरफ देखकर अपने मन में कहा, इप्सिता फोन पर किसी से बात कर रही है, उनकी बात खत्म हो जाए फिर हम उनसे बात करते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु वापस बालकनी में आकर खड़ा हुआ और अपने मन में बोला, हो ना हो इप्सिता ने मासा की वजह से ही ये बात बोली होगी, क्योंकि हम इप्सिता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहती। वहीं दूसरी तरफ इप्सिता नंदिनी से बात कर रही थी। उसने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पापा ने तुम्हारे लिए यहीं पर इतनी अच्छी जॉब ढूंढी है तो ये अच्छी बात है। चलो कम से कम कोई तो गुड न्यूज़ सुनने को मिली हमें, हम सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। और भाई वो डैड के साथ ऑफिस जाने लगे। नंदिनी ने कहा, हाँ उदय ने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, बट वो मुंबई वाले अपने जॉब को ऑनलाइन हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके मुंबई वाले बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जब उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया तो वो अब इस तरह उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उदय उनके साथ सारी ऑनलाइन मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। इप्सिता नंदिनी से आराम से बात कर रही थी, तभी नंदिनी ने कहा, अरे हाँ मैं तुझे एक बात तो बताना भूली गई, तू ध्रुव का नंबर क्यों नहीं पिकअप कर रही है? वो बेचारा परेशान हो रहा है। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता थोड़ा सोच में पड़ गई। उसने अपने मन में कहा, अब हम क्या बताएं नंदिनी से कि हमने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है? इप्सिता ये सोच ही रही थी तभी नंदिनी ने कहा, तेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी ना, तो उसने मुझे कॉल किया था, उसने अभिमन्यु जीजू का नंबर मांगा और मैंने उसे जीजू का नंबर दे दिया, मैंने ठीक किया ना? जैसे ही इप्सिता ने नंदिनी की ये बात सुनी वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, क्या तूने ध्रुव को अभिमन्यु का नंबर दिया? लेकिन क्यों? नंदिनी ने इप्सिता को इस तरह चिल्लाते देखकर धीमी आवाज में कहा, ध्रुव को तुझसे बात करनी थी और तेरा नंबर जब लग नहीं रहा था तो मैंने उसे जीजू का नंबर दे दिया, क्यों जीजू ने तेरी उससे बात नहीं करवाई क्या? नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओ गॉड, ये तुमने क्या किया नंदिनी? नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर परेशान होते हुए बोली, क्या कर दिया मैंने? मैंने गलती की क्या? मुझे ध्रुव को जीजू का नंबर नहीं देना था क्या? इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कब दिया तुमने उसे नंबर? नंदिनी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, दोपहर में, क्यों? इप्सिता ने कहा, तुम फोन रखो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल कट कर दिया और सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। उसने कहा, कहीं ध्रुव ने अभिमन्यु से कुछ बात तो नहीं कर ली? नहीं, हमें ध्रुव को अभी कॉल करना होगा। इतना बोलकर इप्सिता अपने मोबाइल फोन से ध्रुव का नंबर अनब्लॉक करके ध्रुव को कॉल करने जा ही रही थी कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इप्सिता ने फोन को स्विच ऑफ होते देखा तो उसने जल्दी से उठकर फोन को चार्जिंग पर लगाया। तभी अभिमन्यु अंदर आया। उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्सिता हमें आपसे कुछ बात करनी है। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी वो समझ गई कि अभिमन्यु को उससे क्या बात करनी है। वो अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे वहीं पर बेड पर बैठा दिया। इप्सिता के दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही थी क्योंकि अभिमन्यु के चेहरे पर सीरियसनेस साफ नजर आ रही थी। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ अभिमन्यु, आपको क्या बात करनी है हमसे? अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ध्रुव का हमारे पास कॉल आया था। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के मुंह से ध्रुव का नाम सुना तो इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद करके मन में कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा, उसने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स किया। उसने अभिमन्यु के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और अभिमन्यु के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, अभिमन्यु हम अब राजवंश परिवार की बहू हैं और इस महल की रानी सा, तो अब हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें अपनी उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। तो अब आप ही सोचिए, ऐसे में अगर हम मॉडलिंग पर ध्यान देंगे तो अपनी उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे संभाल पाएंगे, इसीलिए हमने ध्रुव से मॉडलिंग के लिए मना कर दिया। आप भी ध्रुव की बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए। और इप्सिता ये बात बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या कहा आपने? आपको क्या लगता है इप्सिता, हम पागल हैं? जैसे कि अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं हम तो बस, अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा, हमें सच सच बताइए, आपने सिर्फ और सिर्फ मासा की वजह से मॉडलिंग के लिए मना किया है ना?
इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने मासा की वजह से कुछ भी मना नहीं किया। आप बेकार में ही ये सब मत सोचिए। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ छोड़ा और उठकर खड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सच बताएं तो हमारा अब मॉडलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बचा है। वैसे भी अब जब हम महल की रानी सा बन गए हैं तो हमें मॉडलिंग की क्या ही जरूरत है। हम तो बस अब आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इप्सिता इतना बोलते हुए शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और अपनी ज्वेलरी को उतारने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के पास आकर हाथ पकड़ते हुए बोला, झूठ, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती। हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ये भी पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मासा की वजह से ही ये बात कर रही हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए इप्सिता, हम मासा से खुद ही बात करेंगे और वो भी अभी। इतना बोलकर अभिमन्यु रूम से बाहर निकलने लगा। इप्सिता ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अभिमन्यु, रुकिए। इप्सिता अभिमन्यु को रोकने के लिए उसके पीछे भागी। उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मासा से कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते मासा और भी ज्यादा परेशान हो। अर्पिता के जाने के बाद से वो पहले ही इतनी ज्यादा परेशान है और वो आपसे ठीक से बात नहीं करती, और अब अगर आप इस बात को लेकर उनसे बात करने गए तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। हम नहीं चाहते अब हमारी वजह से आप दोनों के बीच में और भी ज्यादा डिफरेंस आए। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी तो उसने कहा, बस हम यही सुनना चाहते थे। हमें पता था आप ये सब सिर्फ और सिर्फ मासा की वजह से कर रही हैं, लेकिन हम अब और मासा की वजह से आपको सफर नहीं होने दे सकते। आपने पहले ही मासा की वजह से बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब आप हमारी पत्नी हैं और सब कुछ आप अपनी मर्जी से करेंगी।
इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी उसने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, हम भी अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे अभिमन्यु, हमारी मर्जी है, हम अब नहीं करना चाहते मॉडलिंग। टू बी कंटिन्यूड।